Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Gyan to ho gaya, sravan kiya. Jaise aap Vedant sravan karne lage, malum pada ki yeh jo upadhik sharir mein rehne wala jo jivatma hai, इस उपाधि से सर्वथा निर्लिप्त है, सर्वत्र अवस्थितो देहे, सभी देहों में स्थित रह करके भी यथा सर्वगतम सूक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते। आकाश में तारे हैं, चंद्रमा है, बारिश होती है, लेकिन ना तो आकाश में कोई गीलापना है, ना ही उन चंद्रमाओं से उसका कोई संबंध है। वैसे ही ये आत्मदेव इस शरीर में रह करके भी इस शरीर से सर्वथा वो क्या है, आकाश की तरह अलिप्त हैं, निर्लिप्त हैं, लिपायमान नहीं होते। ये जैसे वेदांत श्रवण किया आपको ये ज्ञान हो गया, इसको बोलते हैं आपात ज्ञान। आपात ज्ञान को ही बाद में वास्तविक ज्ञान में परिणत करना है। आपात ज्ञान के लिए ही बार बार श्रवण करने के लिए जोर दिया गया। उसके लिए दृष्टांत सुनते हैं ना आप लोग। कोई एक आदमी था, पीठ पे बकरा ले जा रहा था, बकरा, और तीन चार लोगों ने देख लिया इसकी पीठ पे बकरा, वो लोग भी बकरा खाने वाले थे। अब सीधे तो कहेंगे नहीं ना कि हमको दे दो। बोले यार इससे बकरा लेना है, क्या करें। सब ने योजना बना ली, अलग अलग जगह खड़े हो गए और बोले इसको बोलना कि ये बकरा नहीं गधा है। एक ने कहा रे तू अपने पीठ पे गधा ले जा रहा है। वो पूरा उलट पलट के देखता है, है बकरा गधा कैसे बोल रहा है। बोले तुम्हें गधा दिखाई दे रहा है तो बकरा है। बोले नहीं नहीं ये गधा है, तुमको किसने बोल दिया ये बकरा है। यार ऐसे बोलता है, उसने सुना नहीं, आगे चला गया। अब दूसरा आदमी दो फरलांग पे खड़ा था, उसने भी बोला अरे तू गधा कहां ले जा रहा है। एक बार सुना उसने उतना नहीं माना, लेकिन दूसरी बार जब सुना अब उसको थोड़ा अपने बकरे में ही संदेह होने लगा कि उसने भी गधा कहा है और ये भी कह रहा है तो हो ना हो कहीं गधे का कुछ अंश तो नहीं है इसमें। तभी उसने अनसुनी की और दो फरलांग और आगे जाता है तो फिर कौन मिल जाते, तीसरा व्यक्ति मिलता है। उसने तो पक्का कर दिया कि तुम्हें पीछे कोई नहीं मिला, क्या बताने वाला ये गधा के जो लेके तू ढो रहा है। अब उसको लग रहा मिला तो था, दो आदमी बताए भी थे और ये भी बोल रहा है तो तीसरे ने भी बोल दिया। एक ही बकरे को चार पांच आदमी बोले, दस आदमी बोले तो पक्का होगा कि नहीं होगा। उसने अंतिम में मान लिया कि सब इसको जब गधा बोल रहे तो ये गधा ही होगा, बकरा नहीं होगा। गलत बात को भी सही कर देना, और सही बात को सही करने के लिए फिर कहना ही क्या है। शास्त्र जितने भी आप वेदांत सुनते हो, बारह महीने अलग अलग महापुरुष आते हैं, आप एक ही बात तो सुनते हो। आपात ज्ञान तो हो चुका है, लेकिन इसको अब मैं ही वह शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परब्रह्म परमात्मा हूं, इसके लिए जब तक निष्ठा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक सुनते हुए भी न बहुना श्रुते न जो कहा है ना वो ठीक ही कहा है। कितने भी सुनते रहो जब तक ये दृढ़ न हो जाए तब तक बात बनने वाली नहीं है। आपात ज्ञान ही बाद में वास्तविक ज्ञान में होता है श्रवण आदि के द्वारा। फिर संशय विपर्य रहित शुद्ध जो ज्ञान होगा उसको जान करके जब हम मौन धारण करते हैं, ये हो गई विज्ञ की अवस्था। विशेषेण जानाती न किंचित जानाती, जो कुछ जानता ही नहीं, छोटा बच्चा है उसके सामने अभी हम दस श्लोक ही पढ़ेंगे सुनाएंगे, उसको क्या मालूम पड़ेगा। वो है सर्वथा अज्ञ। अज्ञ और विज्ञ के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं, वेदांत श्रवण करने की जरूरत नहीं। अब जरूरत है तो कैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। हम लोग थोड़ा तो जानते लेकिन अभी पूरा नहीं जानते। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, थोड़ा जानना भी कैसा है। परमात्मा के लिए शास्त्र में आया लिंग शब्द का प्रयोग किया, लिंग बोलते हैं लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। छिपे हुए चीज को पहचानने का जो तरीका है इसी को बोलते लिंग। परमात्मा को अभी तक जितने भी हमने ढूंढने का प्रयास किया शायद वह हमारा प्रयास ही गलत था। जब शास्त्र श्रवण करने लगे तब हमें एक क्लू मिल गया। क्लू बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो क्लू क्या होता है? एक हमें आइडिया मिल गया। वो क्लू इसी प्रकार से है, चोर जब चोरी करके भागा, लोगों ने हल्ला किया चोर चोर चोर, लेकिन देखते ही देखते रफू चक्कर हो गया, चंपत हो गया वहां से। पुलिस में जाके शिकायत की, संयोग से उस दिन थोड़ी बारिश हुई थी, मिट्टी गीली थी, चोर जो भागा था जिस रास्ते से उसके पैर के चिन्ह को देख करके पुलिस वाले बोलते हैं चोर पकड़ में आ गया। कहां आया पकड़ में? वो देखो इसके पैर के चिन्ह है। बोले ये तो आप मिट्टी को चोर बता रहे हैं, थोड़ी चोर है। बोले इसी पैर के चिन्ह को देख करके हम धीरे धीरे जहां भागा है ना वो उधर हम पहुंच जाएंगे। शास्त्र इतना बड़ा है, परमात्मा पूरा व्यापक है, सर्वत्र है, लेकिन उसको तो जैसे पुलिस वाले चोर के पदचिन्ह को देख करके पकड़ने की कोशिश करते हैं वैसे हमारे यहां भी शास्त्र की बड़ी कृपा है। इस परमात्मा को कैसे पकड़ना है उसका तरीका बताया है। उसके तरीका क्या हो सकता है? वह आत्मदेव परमात्मा एक होकर के भी अनेक रूपों में अपने को उन्होंने प्रकट किया। अभी तक हम लोगों को एकता में अनेकता का देखने का अभ्यास तो बन गया है, लेकिन वेदांत कहने लगा कि अरे भाई अब आप अनेकता में एकता को देखने का अभ्यास करो। कैसे करेंगे? 100 आदमी बैठे, 100 आदमी बैठे, लगता तो ऐसा है कि 100 लोग बैठे हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अकेला ही बैठा है। यहां जितने भी बैठे हैं ना सब अकेले ही बैठे हैं। 100 कह करके तो आप मान लो फूल की माला ले आओ बोल दिया, लेकिन इसमें जितने भी फूल के एक एक दाने हैं ना ये सब अपने आप में एक एक करके बैठे हैं। माला कहने से हमको अलग से नाम नहीं लेना पड़ता, 100 लोग बैठे हैं बोल करके हमें विश्लेषण नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अकेला ही बैठा है। आप लोगों ने देखा ही होगा ये पहाड़ा गिनते ना, पहाड़ा इंग्लिश में भी शायद 2 अंजा 2 से शुरू होता है, 2 अंजा, एक का कहीं पहाड़ा होता है? एकम एक, एक दूना दो, एक त्रिका तीन, ऐसा होता है? नहीं नहीं होता, 2 से शुरू होता है, 2 एकम 2। अच्छा चलो होता भी होगा, एकम एक, 2 एकम 2, 3 एकम 3, जितने भी पहाड़ा है सब में एक ही एक है ना, उसका हिसाब निकाल तो कितना निकलता है? जब 2 मिलते हैं ना तब जाकर के 2 दूना 4 होता है, लेकिन 2 एकम 1 2 एक ही निकलेगा सब में। ये परमात्मा जो है ना वो रहता तो हमेशा एक ही है, लेकिन जब हम किसी चीज के साथ मिला देते हैं तो हम पहाड़ा गिनते हैं। इसी को वेदांत में अनुस्यूत कहा है। अनुस्यूत, अनुस्यूत का मतलब होता है पिरोना। जितने भी ये फूल हैं अलग अलग हैं, गेंदा का भी हो सकता है, गुलाब का भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो धागा है वह एक ही है, इसलिए सब पिरोया हुआ है। इसलिए परमात्मा का नाम रखा ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ किया ही है, आप लोगों ने सुना होगा, बृहत्वात् बृंगणत्वात् च ब्रह्म, जो बड़ा हो व्यापक हो सबको पिरो करके रखता हो गूंथ करके रखता हो जिसमें सब अनुस्यूत है ओतप्रोत है उसका नाम है ब्रह्म। आवरण आवरणात्मकत्वात् भ्रमादि उपादानत्वात् च आत्मनो निर्विकारत्वात्। आत्मा निर्विकारी है ये भी सबको पता है, किसी भी विकार से इसका कोई संबंध नहीं। विकारी क्या चीज है? अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते, जो षड्भाव विकार है ये सब शरीर में होता है, आत्मा में ये सब नहीं होता। आत्मा उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न होता है वो मरता भी है, इसलिए आत्मा का नाम है अजो नित्य, न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता में सबका निषेध किया है। और नैनम छिंदंती शस्त्राणी कह करके भी बता दिया, इसलिए वह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है। पांचों भूतों के बीच में रह करके भी इन सब का तो जलना सुखना हो सकता है, लेकिन आत्मा का इससे कोई संबंध न होने के कारण न तो ये काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। आत्मा का स्वरूप क्या है गीता में सुस्पष्ट भगवान ने बताया है, इसलिए इसकी जो निर्विकारिता यही है। अब जब शरीर में वह आया, उपाधि को जब ग्रहण किया, बाहर के वस्तुओं को देख करके हमारे अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन अंतःकरण किसके ऊपर टिका हुआ है? जिसने अंतःकरण को टिका के रखा उसी का नाम दिया कूटस्थ। क्या नाम है उसका? कूटस्थ। बाहर व्यापक रूप से जो परमात्मा पांच भौतिक उपाधि को ग्रहण करके उसी का अंदर क्या नाम पड़ जाता है? कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब ही हो गया कि कूड़े में स्थित, कूड़ा मतलब ढेर, कूड़ा मतलब कचरा। पांच भूत रूपी जो कचरा है, जो ढेर है, उसमें वो क्या है? स्थित है। अथवा पांच भूत जिसमें स्थित है, कूड़े में स्थित है, अथवा कूड़े जिसमें स्थित है, उसी का नाम है कूटस्थ। वह निर्विकार रहते हुए भी उसी में टिका हुआ जो चिदवद आभासते, चेतन की तरह जो भासता है उसी का नाम है चिदाभास। चेतन तो नहीं है लेकिन चेतन की तरह है। शीशे के सामने जितने भी लोग आए सबने अपना अपना चेहरा देखा, भला शीशे में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये शीशा की महिमा इतनी बड़ी है, भगवान ने कहा ममई वांसो जीवलोके, शीशा में चेहरा देख करके हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने अपने चेहरे का अंश देखा। किसमें देखा? शीशे में देखा। अंश इव अंश, शीशे में कोई अंश अंश नहीं आया। तो शीशा की महिमा ऐसी है कि जब जब हम उसके सामने जाते हैं तो हमें चेहरा दिखा देता है। यदि अंश होता तो कुछ शीशा में टुकड़ा लगना चाहिए, कुछ हिस्सा दिखना चाहिए, मुंह पर जो कचरा था या तो शीशा में लग जाना चाहिए, वो भी नहीं होता। ऐसे अंतःकरण के सामने जाने पर जो कूटस्थ है, उस कूटस्थ को हमें कैसे देखना है? मन में जो भी भाव आए सबको आप देखो तो साक्षी भाव से देखने के लिए कहा। और साक्षी भाव का मतलब ही होता है कि उस घटना से अपने को कोई लेना देना नहीं। घटना घटते हुए तो आपने देखा लेकिन उसमें हमें कोई लेना देना नहीं। इसी को बोलते साक्षी, इसी को बोलते गवाह। गवाही देने के लिए जाते ना, विटनेस। वो विटनेस कैसे होगा? उदासीन वदासीन जब आता है तो साक्षी का लक्षण किया है आप लोग ये याद रखना, ज्ञातृत्व सति उदासीनत्वम साक्षित्वम, ऐसा लक्षण किया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही? हाँ थोड़ा आज थोड़ा लग रहा होगा हार्ड विषय, लेकिन कोई बात नहीं, ये पूरा उसी की भूमिका है ना। भूमि न तो यम बोलना तो बहुत आसान है, अब प्रवचन चल रहा है ना, सीधा तो अर्थ यही है कि न पृथ्वी हूं, न जल हूं, न तेज हूं। आगे फिर दूसरा श्लोक आ जाएगा, न वर्णा न वर्णा श्रमाचार धर्म। क्योंकि सारा झंझट तो शरीर को लेकर के, जब शरीर को ही हमने नहीं माना, पांच भूत का निषेध हो गया, तो अब ये शरीर किस वर्ण का होगा? ना ये ब्राह्मण वर्ण है, ना क्षत्रिय वर्ण है, ना कोई गृहस्थ आश्रम है, ना वानप्रस्थ आश्रम है, सबका निषेध हो जाएगा। इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। बाकी श्लोकों में उतने गहरी व्याख्या नहीं की आचार्य ने, पहले श्लोक में ही सारी बातें रख दी है। और हम पूरे टीका इसलिए नहीं पढ़ रहे, वो संस्कृत की पंक्ति आप थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूं, जिससे समझ में भी आ जाए। बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया है। तो न वर्ण आश्रम आचार धर्मा, न कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, न कोई आचार है, सब किसको लेकर के? शरीर को मानेंगे तभी तो है। और यहां सबसे पहले श्लोक में सबका निषेध कर दिया, इसलिए कह दिया न वा केवलत्वम न चा केवलत्वम कथम सर्व वेदांत सिद्धम ब्रवीमि। वह तो वेदांत सिद्धांत सिद्ध है, सिद्ध वस्तु के बारे में क्या बोला जाए? फिर भी कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलेंगे तो बात कैसे बनेगी? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। यही है ना मुहावरा, एक साधे सब सधे। रहीमन सीचे मूल को और फूले फले अघाय, बढ़िया बढ़िया है, सब उदाहरण देते हैं लोग। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। एक ही चंद्रमा अलग अलग जल में विविध प्रकार के दिखाई देते हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, ये सब दृष्टांत तो दिया है ना, उदाहरण कितने सारे हैं। तो बात ये चल रही है, अभी क्या लिख रहे थे आप लोग? उदासीन ज्ञातृत्व सती उदासीनत्वम साक्षित्वम। थोड़े से न्याय घटित पंक्ति है कि उदासीनता और ज्ञातृता जब दोनों हो तब साक्षी का लक्षण घटेगा। यदि एक चीज हो और एक चीज नहीं होगी, मान लो उदासीनता है जिसमें, उसको साक्षी कहेंगे तो ये लक्षण चला जाएगा खंभे में। खंभा भी शांत है, उदासीन है, ये भी साक्षी माना जाएगा, लेकिन इसमें ज्ञातृता नहीं है, ये जानता नहीं है कुछ भी। और जानने वाला को उदासीन कहेंगे, साक्षी कहेंगे, तो दुनिया जानती हर बात को, वो भी क्या होने लग जाएंगे? साक्षी होने लग जाएंगे। जानता तो है लेकिन वो उदासीन है, और ये उदासीन तो है लेकिन जानता नहीं है। इसलिए साक्षी का लक्षण वहां घटेगा जिसमें उदासीनता भी हो और जानता भी हो, वो हो गए हम लोग हैं। अब अंतःकरण में जो जो घटनाएं घट रही है सबको हम जानते हैं। क्या आया अभी मन में? क्रोध आया, काम उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न हुआ, इसको कौन जानेगा? मैं ही जानता हूं। लेकिन अब हमें इससे करना क्या है? बोले उदासीन रहना है। उदासीन वदासीन गुणेर यो न विचाल लेते, उन गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता। ऐसी स्थिति जब आवे तब इसको बोलते हैं साक्षी। साक्षी भाव में रहना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे साक्षी भाव में तो भगवान शंकर ही रह सकते। अत्तुम बांछति सांभवो पशुपते आखो क्षुधार्थ फणी, ऐसा नीतिकार ने लिखा है कि भगवान शंकर का वाहन कौन है? नंदी। और उनके गले में कौन? सर्प। सर्प जो है ना गणेश जी के चूहा की तरफ टकटकी लगाए बैठा है, देख रहा है कब मौका मिले मारूं इसको। और उस सांप की तरफ जो है ना भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है मोर मयूर, वो घात लगा के बैठा है। कैसे देखो एक दूसरे में, सांप चाह रहा है गणेश के चूहे को खाऊं, और भगवान कार्तिकेय का मयूर चाह रहा है कि मैं सांप को खाऊं। और इन सब को खाने वाला एक और है, भगवती पार्वती का वाहन शेर, वो चाह रहा है कि इन सबको खा जाऊं, हो गया ना। और इन सब के कौन जान रहे? भगवान शंकर। सबको शिव जी को मालूम है कि ये सब आपस में एक दूसरे को घात लगा के बैठे, लेकिन स्वयं कैसे है? तो स्वात्मा राम तया हिता हित सम स्वस्थो हरह पातु वह, स्वात्मा राम तया हिताहित सम, हित और अहित इन दोनों में जो सम रहे, तभी तो रावण ने तांडव स्तोत्र में लिखा समम प्रवर्तयन मनः कदा सदा शिवम भजे। भगवान शंकर के अंदर जैसी समता है, ऐसी समता, ऐसा समत्व का भाव हमें प्राप्त हो जाए तभी तो मैं शिव जी का भजन करूंगा। समत्व भाव है तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेन्द्रयो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो। गीता के बारे में अध्याय में हम लोगों ने कल पाठ किया, समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो। पढ़ने के लिए हम लोग सब कुछ पढ़ते ही हैं, जानते भी क्या होना चाहिए, लेकिन जब साक्षी भाव से रहने की बात आती है, घर में यदि दो बेटे हो, बहू हो, बच्चे हो, और वहां जब साक्षी भाव में रहने की बात की जाए तो थोड़ी कठिनाई तो होती है ना। अब आप दश श्लोक ही सुन रहे हो तो इतना याद रख लेना कि साक्षी भाव में गए बिना जो आपात ज्ञान श्रवण हुआ किया, अभी हमें विज्ञ बनना है, अल्पज्ञ जब तक बने रहेंगे तब तक बीच की स्थिति हम लोगों की, अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ। और ये अल्पज्ञता की जो बात चले, भगवान परमात्मा अपनी लीला से लीनम अर्थम गमयति तिलिंगम, उनके जो लिंग है पहचान करने का तरीका ये बड़ा विलक्षण है। जिस सूर्य को बादल ढकता है, जिस सूर्य को बादल ढकता है, उस बादल के कोने से भी कहीं न कहीं से सूर्य का प्रकाश निकल आता है, और उसी प्रकाश से हमें बादल का भी ज्ञान होता है और सूर्य का भी ज्ञान होता है। छोटे से टुकड़ा से चाहे हाथी को ढको, चाहे एक छोटे से माया के द्वारा परमात्मा को ढको, लेकिन उस परमात्मा का ऐसा प्रकाश है, उस माया के कोने से निकल करके माया को भी दिखा देता है वो प्रकाश, और उसी प्रकाश से हमें परमात्मा को जानने में भी आसानी हो जाती है। ये जो संसर्गाध्यास रूपाध्यास है ना, ये भी भगवान की कृपा है। पहले हमें अपने अध्यास का ज्ञान तो हो, नहीं तो ब्रह्म सूत्र जब प्रारंभ हुआ तो आचार्य को अध्यास भाष्य लिखने की क्या जरूरत थी। रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, ये जब आप जानोगे तभी तो उसको हटाने की कोशिश करोगे। इसलिए पहले अपने अज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, तभी कोई व्यक्ति उसको हटाने का प्रयास करेगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कम से कम हम लोगों को अपने अज्ञान का तो पता चल गया, तभी हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे। जिनको अभी अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठे हैं, जो लोग अभी सांप को ही रस्सी मानने को तैयार है, उनकी तो बात छोड़ो। हम लोगों को इतना तो मालूम है कि यह जो व्यापक परमात्मा है पूरे संसार में, चोर को पकड़ने के लिए जैसे पुलिस ने वचन दे दिया कि अब मैं पकड़ लूंगा, ये पकड़ में आ जाएगा, यतो वाहि इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविसं विसन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े संसार को बनाया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसकी रचना करने की क्या आवश्यकता थी। बोले परमात्मा ने बड़ी कृपा की कि इन चीजों के माध्यम से तुम हमको जान लोगे, पहचान लोगे, इसलिए इसका नाम है अध्यात्म विद्या। बाहर परमात्मा कहीं बैठे मिलेंगे, सातवें आसमान में होंगे, ये कोई भरोसा की बात नहीं है, आश्वासन की बात नहीं है, यहां तो गारंटी है पक्का। प्रारंभ अपने से ही करना है और अपने में ही शांत हो जाना है, तब जाकर के जिस परतंत्रता का अभी तक हम लोगों को भान है, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। इसके लिए एक उदाहरण छोटा सा दिया, जितना हम यहां स्त्री पुरुष के रूप में बैठे हैं और संसार के जितने भी प्राणी हैं, पांच भौतिक हो चाहे कोई भी हो, सब में वह जो बिंब रूप में विराजमान है परमात्मा, उसी बिंब के माध्यम से परमात्मा को जाना जा सकता है। आपके बिंब से आप अपने को जानोगे, मैं अपने बिंब से अपने को जानूंगा। हमारा बिंब आपके काम का नहीं, आपका बिंब हमारे काम का नहीं। इसके लिए एक कोई ऐसा आदमी था, बनारस में बोलते कोई करवत का मंदिर है, वहां की किंवदंती ऐसी होगी लौकिक कथा कि आत्महत्या करने से पहले यदि व्यक्ति मन में संकल्प कर लेता है कि मैं मरने के बाद ये बनूं तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो एक को ऐसा जाति से वो चमार था, उसके मन में आया कि इससे छूटने के लिए मैं भी कुछ करूं, वहां जाके आत्महत्या कर लूं और भगवान से कहूंगा कि इसके बाद आप हमें ये बना देना। तो जब वहां पहुंचा वो आत्महत्या करने के लिए तो ब्राह्मण देवता वही विराजमान थे, बोले भाई क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा मेरे मन में आया। तो बोले ये है कि मरने से पहले यहां पहले संकल्प करना पड़ता है और संकल्प मैं कराऊंगा, बोल तुम्हें क्या बनना है? अब उसके मन में आया कि मैं ब्राह्मण बन जाऊं। अब ब्राह्मण बनने पर सोचने लगा, ब्राह्मण बनूंगा पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, पाठ याद नहीं होगा गुरुजी थप्पड़ मारेंगे, तो बड़ा झंझट है, ब्राह्मण बनना ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो राजा बन जाओ, क्षत्रिय बनू, राजा बनूंगा, सब लोग कहेंगे महाराज की जय हो, सब हमारे शासन में रहेंगे। अरे अरे राजा बनना भी तो ठीक है, लेकिन युद्ध में आजकल तो राजा जाते नहीं ना युद्ध में, पहले तो युद्ध होता था राजा को ही आगे जाना पड़ता था। तो उसने सोचा युद्ध में जाना पड़ेगा, कहीं तलवार अपने गर्दन पे न पड़े, ये क्षत्रिय बनना भी ठीक नहीं, अच्छा है कि वैश्य बने, दुकानदारी चलती रहेगी, खाएंगे पिएंगे तोंद फुलाएंगे, लोग भी लालाजी सेठ जी कहेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। फिर लगा नहीं, ये सेठ लोग भी जब कहीं हिसाब किताब का गड़बड़ होता है तो उनका भी हार्ट अटैक हो जाता है और रात में नींद नहीं आती, ये भी बनना ठीक नहीं है। अंतिम में बोलता है जो हूं वही ठीक हूं, थोड़ा दो चार जूता सीले ना, अपना शांति से रहना, मनमानी न उठने का टंटा न सोने का टंटा, कभी सोएंगे कभी उठेंगे, कौन चक्कर में पड़े। फिर वो बेचारा अपना संकल्प छोड़ के लौट के आ गया। तो ये जो अनधिकृत चेष्टा जो हम लोग करते हैं ना कि उसको ये बनाया हमको क्यों नहीं बनाया, हमको ये क्यों बनाया, ऐसा हमको क्यों नहीं बनाया, यही असंतुष्टि का अशांति का कारण है। तो हमें जो भगवान ने जिस बिंब को स्थापित करके पांच भूत वाला शरीर दिया है, इसी के माध्यम से हमें उसको प्राप्त करना है, तब जाकर के फिर निषेध करना, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, उससे पहले तो अभी खोज करनी पड़ेगी। इसने कहा देव आत्मशक्ति स्वगुणेर निगूढ़ाम, वह जो देव अपने आत्मशक्ति से आवरण विक्षेप शक्ति से अपने को ढकते भी है और उन्हीं की एक ऐसी शक्ति है जो अपने को प्रकट भी कर देते हैं, वह और क्या तरीका हो सकता है, इसका विचार फिर कल करेंगे। हरिओम।